31 अक्टूबर दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अतीत में पटेल के योगदान को कम दिखाने के प्रयास हुए।
शायद हमारे देश की नई पीढ़ी को उनसे परिचित ही नहीं करवाया गया, एक प्रकार से इतिहास के जरोखे से इस।
कुछ हलकों में कहा गया, बीजेपी द्वारा पटेल की विरासत को हड़पने की कोशिश। बताएंगे किस तरह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर हो रहा है इंसानों और जंगली हाथियों के बीच संघर्ष।
हाथी घर तोड़ दिया तो हम लोग पेड़ का ऊपर में मतलब माचा बना है, उसी से हम लोग गुजारा कर रहे हैं साहब। अब ये हम लोग जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं हमारा मकान पर।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती के मौके पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पटेल को कम महत्व देने के प्रयास किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके योगदान को भुला दिया जाए, लेकिन युवा उनके योगदान को नहीं भूलेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरदार पटेल ने कहा था कि आरएसएस की गतिविधियां राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। एक भारतीय अदालत ने 10 साल की अपनी भांजी से बलात्कार करने के आरोप में दो मामाओं को दोषी पाया है। भांजी के आरोपों के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इस साल जुलाई में 10 वर्षीय बच्ची गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद उसने एक शिशु को जन्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची के गर्भपात की अनुमति नहीं दी थी। दोनों मामाओं को अगले महीने सजा सुनाई जाएगी। स्पेन की केंद्रीय सरकार द्वारा बर्खास्त किए गए कैटलोनिया के अलगाववादी नेता कार्लस पुज्जेमोंड ने कहा है कि उनकी बात यूरोपियन यूनियन सुने, इसके लिए वे ब्रसल्स आए हैं और दिसंबर में अलगाववादी नेता चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे बेल्जियम में शरण नहीं लेने जा रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर वे स्पेन में रहते तो ये एक प्रकार से स्पेन सरकार को हिंसात्मक कार्रवाई के लिए उकसाना होता। मैं यहाँ राजनीतिक शरण लेने नहीं आया हूँ, यह बेल्जियम का सवाल नहीं है। मैं ब्रसल्स में इसलिए हूँ क्योंकि यह यूरोप की राजधानी है। मैं स्वतंत्र रूप से काम करने और सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। ये थे कार्लस पुज्जेमोंड के शब्द। वहीं स्पेन के विदेश मंत्री अल्फोंसो दासिस ने कहा है कि बेल्जियम कैटलोनिया के बर्खास्त नेता कार्लस पुज्जेमोंड को अगर राजनीतिक शरण देता है तो उन्हें आश्चर्य होगा। उन्होंने स्पेनिश रेडियो से कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये एक सामान्य स्थिति नहीं होगी। पुज्जेमोंड सोमवार को बेल्जियम गए थे, उन पर राष्ट्र से विद्रोह के आरोप हैं, लेकिन उनके वकील ने कहा है कि पुज्जेमोंड ने अब तक शरण के लिए आवेदन नहीं किया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के डिप्लोमेटिक इलाके में भारी विस्फोट हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने 8 लाशें देखी और कई लोगों को घायल पाया। एक स्वास्थ्यकर्मी का कहना है कि कम से कम 3 लाश और 10 घायलों को अस्पताल भेजा गया है। इराकी सेना ने कहा है कि कुर्दिश क्षेत्र की दो मुख्य सीमाओं को वह अपने नियंत्रण में लेने जा रही है। सेना ने कहा है कि वह सीरियाई सीमा पर फिश खबर और तुर्की सीमा पर इब्राहिम अल खलील सीमा को नियंत्रित करने के तरीकों का मूल्यांकन कर रही है। वहीं कुर्दिस्तान सरकार ने इसका विरोध किया है। जनमत संग्रह का इस्तेमाल बगदाद द्वारा हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। वे इस पर अधिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि कुर्दिस्तान के लोगों ने कोई जंग नहीं छेड़ी है, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए वोट दिया था। ये थे कुर्दिस्तान के विदेश मंत्री फलाह मुस्तफा बाकिर के शब्द। रूस ने विदेशी एजेंटों पर पूरे देश में घूमकर विभिन्न नस्ल के लोगों के DNA इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि विदेशी NGO में काम करने वाले एजेंटों के अलावा कई लोगों ने यह काम किया है। सोमवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि रूसी वोटरों की जैविक सामग्रियों को इकट्ठा किया गया था। हालांकि ये किसके लिए किया गया मालूम नहीं। थाईलैंड की सैन्य सरकार ने अगस्त में देश से बाहर भागने वाली पूर्व प्रधानमंत्री यिंगलुक शिनावात्रा के पासपोर्ट को रद्द कर दिया है। यिंगलुक ने कहा था कि उनके पास 2 डिप्लोमेटिक और 2 निजी पासपोर्ट हैं। ये कदम पुलिस के अनुरोध के बाद उठाया गया है ताकि उन्हें थाईलैंड वापस लाया जा सके। वह कहाँ हैं ये अभी तक साफ नहीं है। स्वास्थ्य संस्था मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स ने कहा है कि यमन में उसके चिकित्सा केंद्र पर काफी संख्या में हैजा के मामलों में कमी आई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। भारत के वर्तमान राजनीतिक परिवेश में देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की जयंती ने भी राजनीतिक रंग ले लिया है, या कम से कम इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने न केवल इस अवसर पर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, बल्कि देश भर में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का भी आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय नेताओं ने भी हिस्सा लिया। कुछ हलकों में इसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरदार पटेल की विरासत पर कब्जा करने के एक प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
सुबह सुबह ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री, दूसरे केंद्रीय मंत्री और आला अफसर तक इंडिया गेट के पास मौजूद मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पहुंच गए थे, जहां भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ।
भारत माता की, मैं कहूंगा सरदार साहब, आप बोलिए अमर रहे अमर रहे सरदार साहब।
हालांकि भाषण में मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया, जिनकी आज पुण्य तिथि है, लेकिन फिर मोदी का भाषण जरा राजनीतिक रंग लेने लगा, जब वो कांग्रेस पर हमला करने का मोह शायद न छोड़ पाए, हाँ किसी पार्टी का नाम लिए बगैर।
सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद हमारे देश की नई पीढ़ी को उनसे परिचित ही नहीं करवाया गया। एक प्रकार से इतिहास के जरोखे से इस महापुरुष के नाम को या तो मिटा देने का प्रयास हुआ या तो उसको छोटा करने का प्रयास हुआ, लेकिन इतिहास गवाह है कि सरदार साहब थे।
लेकिन एक दूसरे तरह का राजनीतिक सवाल भी दिल्ली के कुछ हलकों में पूछा जा रहा है, वो ये कि तकरीबन 3 सालों से केंद्र में मौजूद नरेंद्र मोदी सरकार को सरदार पटेल को लेकर इतना भव्य आयोजन करने का ख्याल तभी क्यों आया जबकि गुजरात और हिमाचल में चुनाव सर पर हैं। महात्मा गांधी के पोते और सरदार पटेल की जीवनी लिखने वाले राजमोहन गांधी ने पटेल की विरासत पर कब्जा करने की बीजेपी की कोशिश को शर्मनाक बताया है। मोदी सरकार ने इस मौके पर देश भर में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का आयोजन भी किया था।
कोची दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगा, कोलकाता के साथ।
बल्कि इस अवसर पर सरकारी अधिकारियों और छात्रों को देश की एकता कायम रखने के लिए शपथ भी दिलाई गई। बीजेपी के कोशिश पर सवाल ये कहकर भी उठाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेने वाला राजनीतिक दल पटेल की विरासत पर कब्जे की कोशिश कैसे कर सकता है, जबकि सबको मालूम है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषक अजय सिंह हालांकि बीजेपी की पटेल की विरासत को अपने पलड़े में करने की कोशिश को गलत नहीं मानते हैं।
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन ये हो सकता है कि सरदार क्या आरएसएस की जो आइडियोलॉजी उस समय का आरएसएस था उसकी आइडियोलॉजी से इत्तफाक था कि नहीं उनका, तो ये एक एकेडमिक लेवल पे डिबेट हो सकती है, लेकिन कोऑप्शन में हमें लगता है कि इस बात पे कोई आपत्ति हो सकती है कि सरदार को बीजेपी अपना मान रही है।
आज के सुबह के अखबारों को देखने के बाद पूरे मामले के राजनीतिकरण की बात और साफ हो जाती है। दिल्ली से छपने वाले अखबारों में केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और हरियाणा सरकार ने पटेल के वर्षगांठ पर तो बड़े बड़े इश्तेहार दिए हैं, लेकिन भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का जिक्र नदारद है। हिंदुत्व विचारक और इतिहासकार राकेश सिन्हा हालांकि कहते हैं,
तो 2 अक्टूबर को कांग्रेस सरकारों से पूछा जाना चाहिए कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री को क्यों भुला दिया जाता रहा। तो सवाल यहाँ यह होता है कि जब महात्मा गांधी का विराट व्यक्तित्व रहा है, उस विराट व्यक्तित्व के सामने जितनी भी तप त्याग तपस्या की का व्यक्तित्व हो, उस विराट व्यक्तित्व के सामने उपेक्षित नहीं होता है, ओझल कभी कभी ओझल हो जाता है।
लेकिन अगर बीजेपी ने इंदिरा गांधी के नाम का इश्तेहार देने की बात को गैर जरूरी समझा तो कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। मंगल के दिन दिल्ली के अखबारों के पहले पन्ने के नीचे का आधा हिस्सा इंदिरा गांधी पर दिए गए कांग्रेस के इश्तेहारों से पटा है, तो पटेल का जिक्र राहुल गांधी के ट्वीट तक सीमित रहा। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
अमेरिका में ट्रंप चुनावी टीम के अहम सदस्यों के खिलाफ रूस के साथ कथित सांठगांठ के मामले में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन हिल सा गया है, और अब प्रशासन की कोशिश है कि उन सलाहकारों से राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी चुनावी टीम की दूरी को सबसे बयान किया जाए। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
सन 2016 के अमरीकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप के सिलसिले में रूस के साथ मिलकर काम करने के आरोपों का तो राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से इंकार करते रहे हैं, लेकिन अब जबकि उनकी चुनावी टीम के एक विदेशी मामलों के सलाहकार जॉर्ज पापादोपोलस ने रूसियों के साथ मुलाकातें करने और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ चुनावी सामग्री इकट्ठा करने के आरोपों को स्वीकार कर लिया है, तो अब व्हाइट हाउस प्रवक्ता सैरा सैंडर्स समेत ट्रंप प्रशासन के कई लोग ये साबित करने में जुट गए हैं कि पापादोपोलस तो बस एक वॉलंटियर थे जो हजारों वॉलंटियर्स की तरह चुनावी टीम में शामिल थे, और उन्होंने चुनाव के दौरान जो कुछ भी किया वो खुद उसके जिम्मेदार हैं।
This individual was the member of a volunteer advisory council that met one time over the course of a year. Hardly call that some sort of regular advisor. The actions that he took would have been on his own.
अमेरिकी चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप के बारे में विशेष वकील रॉबर्ट मुलर के नेतृत्व में पिछले 6 महीने से जांच जारी है, और इसके तहत ट्रंप प्रशासन के भी कई लोगों से पूछताछ किए जाने की खबरें हैं। ट्रंप चुनावी टीम के कैंपेन मैनेजर पॉल मैनाफोर्ट पर भी अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने और विदेशी अकाउंटों में धन छुपाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं, और मैनाफोर्ट के एक सहयोगी रिक गेट्स के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। इन दोनों पर कुल 12 आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक ट्वीट करके कहा कि मैनाफोर्ट तो 2016 में कुछ ही दिनों के लिए चुनावी टीम के साथ थे, और उन्होंने जो कुछ भी किया उससे बहुत पहले किया। पॉल मैनाफोर्ट के वकील केविन डाउनिंग ने भी अदालत से बाहर आकर कुछ इसी तरह ट्रंप चुनावी टीम से दूरी बनाने की कोशिश की और कहा कि मैनाफोर्ट पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो सन 2014 तक के हैं, यानी ट्रंप चुनावी टीम से जुड़ने से 2 साल पहले।
Those activities ended in 2014, over 2 years before Mr. Manafort served in the Trump campaign.
लेकिन खबरें हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से इन आरोपों के बारे में सुना है तो वो बेचैन से हैं और अपने वकीलों की टीम के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने वकीलों से ये भी पूछा है कि क्या इन आरोपों के बाद अब ये जांच जल्द खत्म हो जाएगी। याद रहे कि स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर को ये हक भी हासिल है कि वो जांच में रोड़े अटकाने के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप से भी पूछताछ कर सकते हैं। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जब से इस जांच में तेजी आई है तब से राष्ट्रपति ट्रंप बहुत चिंतित लग रहे हैं। केली ने उनके साथ इस मामले में कई बार बात भी की है। अमरीकी जांचकर्ता ये पता लगाने में लगे हैं कि क्या रूसी साइबर हैकरों ने डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के मकसद से अमरीकी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया था या नहीं, और जानकारों का मानना है कि रूस के कथित हस्तक्षेप के मामले में जांच की तो बस अभी शुरुआत भर हुई है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
यूपीएससी मेंस यानी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में एक आईपीएस अधिकारी को नकल करते हुए पकड़ा गया है। मामला चेन्नई का है। वो ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से अपनी पत्नी से जुड़े थे जो उनकी मदद कर रही थी। सफीर करीम नाम के इस आईपीएस पर धारा 420 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आपको शायद याद होगा कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त को इम्तिहान में कॉपी करने के लिए उनके प्रोफेसर ने मदद की थी, लेकिन उनका तरीका अलग था। एक नया तरीका तमिलनाडु का एक आईपीएस अफसर ने अपनाया है। सफीर करीम आईपीएस की ख्वाहिश आईएएस अफसर बनना था, तो उन्होंने वही किया जो मुन्ना भाई ने किया। उन्होंने भी एक अध्यापक की मदद ली। वो अध्यापक उन्हीं की पत्नी जॉयस जॉय थी जो उनको चेन्नई में परीक्षा लिखने के लिए हैदराबाद से मदद कर रही थी। हैदराबाद पुलिस के टास्क फोर्स एडिशनल डीसीपी शशिधर राजू बीबीसी को बताते हैं कि वो उन्होंने कैसे किया।
उसको यू नो यहाँ से सपोर्ट कर रहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करके, उन्होंने वहाँ से वो फोटो इमेज एग्जाम हॉल से वो बटन से थ्रो फोटो इमेज क्वेश्चन पेपर भेजने से गूगल में वो डायरेक्ट गूगल मेल को जाके गूगल अकाउंट से आ जाता, ये लोग गूगल सर्च करके डाउनलोड करके उसको आंसर दे रहे। तो ईयरफोन्स लगा लेके यहाँ से ब्लूटूथ और ये लैपटॉप लगा लेके लोग उसको आंसर्स बोल रहे हैं। तो वहाँ उसको पकड़ के वो लोग चेन्नई वाले रिमांड करे, अरेस्ट करके रिमांड कर दिए उसका कन्फ्यूजन में। तो दे अरेव्ड हैदराबाद एंड दे टुक दिस टू इनटू देयर कस्टडी।
चेन्नई और हैदराबाद पुलिस को इस अजीब छापे के बारे में पहली सूचना मिली इंटेलिजेंस ब्यूरो से। सफ़ीर करीम और उनकी पत्नी जॉयस का पीछा दोनों शहरों में हुआ। करीम जब परीक्षा सेंटर पहुंचे तो उन्होंने एक सेलफोन और वॉलेट अधिकारियों को दे दिया, लेकिन उनके सॉक्स में एक सेलफोन, वायरलेस ईयरफोन और खुफिया कैमरा शर्ट पर लगा हुआ था। परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट बाद चेन्नई की पुलिस टीम जब एग्जाम सेंटर में गई तो सफ़ीर करीम को रंगे हाथ पकड़ लिया। सफ़ीर करीम खुद केरला में एक IAS कोचिंग सेंटर चला रहे थे और वहां पहुंची जॉयस जॉय अध्यापक के काम के लिए। काम करते समय दोनों में इश्क हो गया और फिर सफ़ीर करीम ने UPSC की परीक्षा में 112वीं रैंक ले लिए। उनकी प्यास IPS से बुझी नहीं तो उन्होंने फिर से UPSC की परीक्षा देने के लिए तैयारी की। तो क्या सफ़ीर करीम ने पहले भी UPSC परीक्षा में भी इसी तरह नकल की थी? हैदराबाद पुलिस टास्क फोर्स के एडिशनल DCP शशिधर राजू ने कहा,
वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता, वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये वी हैव जस्ट असिस्टेड देम, वी हैव नॉट इंक्वायर्ड एनी फर्दर इंक्वायरीज, पूरा वो लोग कर रहे हैं, चेन्नई का पुलिस कर रहे हैं, इसलिए वो मालूम होता वो भी उसमें भी यूज करा नहीं हो रहा, इंक्वायरी में पता लगे।
जाहिर है कि सफ़ीर करीम को IPS से UPSC निकाल देगी जब कोर्ट इस मामले में अपना फैसला देगी, लेकिन उसके बाद क्या फिर से वो और उनकी पत्नी IAS और IPS के लिए कोचिंग सेंटर चलाएंगे? तो वो क्या सिखाएंगे? ये सवाल तो शायद हर छात्र और उनके अभियुक्तों को गौर करना पड़ेगा। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। उत्तर प्रदेश के देवबंद में लगातार चरमपंथी गतिविधियों की सूचनाओं के बाद अब यूपी पुलिस ने संवेदनशील कस्बों में रहने वाले सभी लोगों के पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों में भी सारे पासपोर्टों की जांच शुरू करने की भी खबरें हैं। नवीन नेगी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पुलिस पासपोर्ट धारकों की दोबारा जांच करेगी। सहारनपुर के जिला अधीक्षक ने BBC से फोन पर इस बात की पुष्टि की है। इसी मसले पर BBC ने पूर्व राज्यसभा सांसद और जमात उलेमाए हिंद के महासचिव महमूद मदनी से बात की। महमूद मदनी ने कहा कि उन्हें पुलिस के इस कदम से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते यह वेरिफिकेशन किसी समूह विशेष का ना हो रहा हो।
ओवरऑल जब मैं देखता हूँ तो इसमें मुझे कोई एतराज की चीज नहीं नजर आती है। सिर्फ इतना सही देखना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या है और वेरिफिकेशन का तरीका क्या होगा, सिस्टम क्या बनाएंगे, वो किस तरह वेरीफाई करेंगे।
मदनी ने कहा कि यह देखना होगा कि पुलिस किस तरह वेरिफिकेशन की इस प्रक्रिया को पूरा करती है। कोई आदमी किस तरह अपने पासपोर्ट को पुलिस से दोबारा वेरीफाई करवाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इसमें कोई एतराज नहीं है। वहीं देवबंद के सामाजिक कार्यकर्ता मेहदी हसन ने इसे मुसलमान युवकों को परेशान करने के लिए उठाया जाने वाला कदम बताया।
देखिए, जहां तक पासपोर्ट के रीवेरिफिकेशन की बात है, मेरे ख्याल से ये हुकूमत का अपना एक काम है और हुकूमत करना चाह रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीवेरिफिकेशन के नाम पर किसी को परेशान करना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इस पर हमें एतराज होगा, हमें क्या बल्कि हर इंसाफ पसंद आदमी को होगा। पिछले कुछ दिनों से कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जिससे रीवेरिफिकेशन का काम जरूरी भी समझ में आता है
जी।
लेकिन मेरे ख्याल से रीवेरिफिकेशन के पसे मंजर में इसके पीछे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक मुर्ता फिर से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है।
पासपोर्ट के दोबारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कैसी होगी और इसे कब शुरू किया जाएगा, इस संबंध में फिलहाल पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। नवीन नेगी, BBC दिल्ली।
हरियाणा के रेवाड़ी गांव की लड़कियां आपको याद हैं? अगर नहीं तो जरा याद कर लीजिए। वो लड़कियां जो स्कूल को अपग्रेड कराने के लिए अनशन पर बैठी थीं और सरकार उनके अनशन के सामने झुक गई थी, लेकिन उसके बाद आज स्कूल में क्या हालात हैं, यही जानने के लिए BBC संवाददाता सरोज सिंह रेवाड़ी के उस गांव में दोबारा गई। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
ज्योग्राफी की मैम है एक, वो साइकोलॉजिक मैम है, वो ज्योग्राफी को जितना उनके बेसिक जानकारी है वो बहुत अच्छी तरीके से बताती हैं। हमने लिया था पॉलिटिकल साइंस, उसके हमारे हेडमास्टर हैं, उनको बहुत सारे काम होते हैं तो इसलिए हमें पढ़ा नहीं पाते।
ये शब्द हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 11वीं में पढ़ने वाली सुजाता के हैं। सुजाता दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी शहर के उसी स्कूल में पढ़ती है जो इसी साल मई महीने में सुर्खियों में था। गांव के इसी स्कूल को अपग्रेड कराने के मुद्दे पर 13 छात्राएं अनशन पर बैठी थीं। सुजाता भी उनमें से एक थी, लेकिन ये शिकायत अकेले सुजाता की नहीं है। जब 11वीं में पढ़ने वाले दूसरे छात्रों से हमने बात की तो पता चला आर्ट्स में पढ़ने वाले 9 बच्चों में से किसी ने अर्थशास्त्र या इतिहास विषय लिया ही नहीं है और साइंस के तो यहाँ छात्र ही नहीं हैं।
मैम हमें बस जो कोशिश है, हमारे टीचर जो सब्जेक्ट के टीचर नहीं है यहाँ पे, हमें बस उन्हीं की जरूरत है।
दो चार थे वो कवाली जा रहे हैं, वरना वो हमारे साथ ही होते, पर अब साइंस तो है नहीं। और ये टीचर भी हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर अब साइंस के नीचे की भी एक दो फैकल्टी आ जाती जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स में से, तो सब एडजस्ट हो जाते।
दसवीं में फेल होने की वजह से स्कूल छोड़ चुकी निकिता भी इसी वजह से प्राइवेट से दसवीं की परीक्षा देगी।
नहीं मतलब ये तो नहीं थी ना फेल हो जाऊंगी, आज तो यही थी भाई क्लियर हो जाऊंगी, तो पेपर तो अच्छे ही हुए थे, पर पता नहीं हम फेल कैसे हो गए। घर वाले तो भाई ये बोलते बाहर तो जाने नहीं देंगे पढ़ने के लिए, बाहर तो इतनी परेशानियाँ होती है, अब यहाँ पे टीचर नहीं है तो फिर क्या करें, घर में बिठा के रखा है, घर का ही काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत बस।
लेकिन स्कूल प्रशासन इससे बहुत ज्यादा चिंतित नहीं दिखा। स्कूल में प्रिंसिपल छुट्टी पर थे, स्कूल इंचार्ज धर्मवीर सिंह से हमारी मुलाकात हुई, वो खुद 11वीं में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं।
18 पास हुए थे तो उनमें से 9 बच्चे यहाँ से छोड़ गए, जो सब्जेक्ट ये लेना चाहते हैं उसका एफिशिएंट टीचर्स नहीं है। हमारे पास अब फिलहाल जो है 6 सेंक्शन पोस्ट हैं और 4 सेंक्शन पोस्टों पे हम हैं, 2 पोस्टें तो वैसे ही खाली हैं।
गांव में लड़कियों के अनशन के बाद हरियाणा सरकार ने स्कूल को अपग्रेड करने का आदेश जारी किया था, लेकिन स्कूल को अपग्रेड करने के नाम पर क्लास की संख्या बढ़ा दी गई, शिक्षकों की नहीं। स्कूल में 11वीं में केवल आर्ट्स का विषय ही है, साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई यहां आज भी नहीं हो रही,
क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, एडमिशन भी ऑनलाइन है। साइंस के हमने एडमिशन डाले वो एक्सेप्ट नहीं किए सिस्टम में, आर्ट्स के डालते थे सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता था।
रेवाड़ी के कोटरा टप्पा डहीना माध्यमिक विद्यालय में इस साल 10वीं में 18 छात्र पास हुए थे, लेकिन केवल 9 ही स्कूल में रह पाए, बाकियों की दिलचस्पी साइंस में थी, तो 12वीं की पढ़ाई के लिए उनको गांव से 3 किलोमीटर दूर कावली गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाना पड़ता है। रास्ते में आज भी उन्हें मनचले लड़कों का उसी तरह से सामना करना पड़ता है जैसा पहले करना पड़ता था। सभी लोग दिक्कतें गिना रहे हैं और हल कहीं नहीं दिखता। सरोज सिंह, BBC, रेवाड़ी, हरियाणा।
पूर्वी भारत के घने जंगलों में एक ऐसा संघर्ष चल रहा है जिसमें एक तरफ इंसान है तो दूसरी तरफ जंगली हाथी। इस संघर्ष में अब तक 1000 से ज्यादा इंसान मारे गए हैं और 100 से ज्यादा हाथी। हाथी इंसानों पर हमला कर रहे हैं तो इंसान हाथियों पर। सुनिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा से सलमान रावी की रिपोर्ट।
पूर्वी भारत के घने जंगलों में संघर्ष चल रहा है जहां एक तरफ इंसान है तो दूसरी तरफ जंगली हाथी। असम के अलावा ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में जारी इस संघर्ष में हाथी इंसानों पर हमला कर रहे हैं तो इंसान हाथियों पर। जंगलों से लगे कई गांवों में लोगों को रात को सोना तक नसीब नहीं है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा का एक गांव, यहां के रहने वाले मदन राठिया भैंस चराने जंगल गए थे, तभी हाथियों के एक झुंड ने उन्हें कुचल दिया। उनके परिजनों को आज भी मुआवजे का इंतजार है।
ऐसा जंगल में घुस गया, अब खोजने के लिए अंदर चला गया होगा जंगल के अंदर, तो भैंसा घर वापस आ गया, फिर चराने वाला वापस नहीं आया, तो हम लोग गाँव के लोग को इकट्ठा किए तो खोजने के लिए चले गए, फिर जंगल में सफर हुआ था।
जिन पर हाथियों ने हमला किया उनकी कहानियां भी दर्दनाक हैं। ऐसे ही हैं पुसाव डेरा के गजन राम।
स्कूल का छात्र मेरा बाइबल पढ़ते नाचते खिलाते हाथी जो ऐसे ऐसे हमको लमाने और लगा हाथी 35 हाथी 22 बराबर हाथी बाप रे हाथी।
बढ़ते हमलों के बीच गांव के लोग अब पेड़ों पर रहने को मजबूर हैं।
ये हाथी घर तोड़ दिया तो हम लोग पेड़ का ऊपर में मतलब माचा बना है, उसी से हम लोग गुजारा कर रहे हैं साहब, यही में रहते हैं हम लोग ऊपर में। अब ये हम लोग जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं हमारा मकान पर, ये हमारा मकान नहीं है, यही पर रहते हैं हम लोग, इसी काम करवे करते हैं, पेड़े पर रहते हैं, चिड़िया जैसे उल्टी उल्टाइए दिया है गणेश भगवान, तो यही पर रहेंगे हम लोग।
अब तक इस संघर्ष में सैकड़ों इंसान मारे गए हैं और हाथी भी। पिछले 50 महीनों में हाथियों के हमलों में 1465 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान लगभग 100 से ज्यादा हाथी भी मारे गए हैं। जिन लोगों पर हाथियों को मारने का आरोप लगा है वो खुद को निर्दोष बताते हैं। कुनकुरी के शिव प्रसाद यादव कहते हैं,
बगल में तार्क लगाया हुआ था और हाथी आके मर गया। हम लोग बोले कि हम लोग नहीं लगाए थे, उन लोग जबरदस्ती लगाए है कह के ले गए, धरा लगा के लेके जेल में डाल दिए।
सरकारी महकमा इंसानों और हाथियों के बीच की तलखियों को कम करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी जितेंद्र उपाध्याय ने BBC से बात करते हुए कहा,
हाथी का इन्फिल्ट्रेशन झारखंड से, उड़ीसा से, पूरे क्षेत्रों में हाथी की उपस्थिति है, जिससे लोगों की फसल नुकसानी हो जा रही है, लोगों को उसके साथ रहने की आदत नहीं है, इसलिए एक भय की स्थिति बनी हुई थी। हाथी मित्र दल बनाया गया है, ये क्या करते हैं, और हाथी सूचना दल भी बनाया गया है। वर्तमान में जहाँ जहाँ हाथी वितरण कर रहे हैं उसके आगे के गाँव कहाँ जाने की संभावना है और पीछे कहाँ जाने की संभावना है, इसकी ये सूचना दल और वन विभाग के दोनों के समन्वित प्रयास से सूचना का आदान प्रदान करके इसको नियंत्रित किया जा रहा है।
इन कोशिशों के बावजूद अब लोग अपने गांव छोड़ने पर मजबूर हैं। पुसव डेरा की एक बड़ी आबादी दूर के कस्बे में एक सरकारी भवन में शरण लिए।
अचानक हाथी आया, फिर एकदम अचानक से उठी, फिर मेरे मम्मी को, मेरे भाई बहन सबको उठाई, फिर भागे, फिर जहां जैसे घर से निकले वैसे हाथी आया, फिर तोड़ दिया घर।
इस संघर्ष का कोई अंत नजर नहीं आता। लोगों को पता नहीं कि वो कब भारत के जंगलों में हाथियों के साथ सामंजस्य बनाकर रह पाएंगे। सलमान रावी, BBC, संबलपुर, ओडिशा।
और अब एक नजर खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर शूटिंग की दुनिया से। हीना सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स के शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। सिंधु ने 626.2 का स्कोर किया। ये उनका लगातार दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल है। उन्होंने जीतू राय के साथ भारत में हुए ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। जहां महिला शूटिंग चैंपियनशिप में हीना सिंधु ने जीत हासिल करी, तो वहीं पुरुषों में दीपक कुमार ने 10 मीटर एयर राइफल में ब्रोंज मेडल जीता। ये मुकाबला ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। अब खबर हॉकी की। जापान में चल रहे महिला एशिया कप में आज मुकाबला था भारत बनाम मलेशिया, जिसमें भारत ने मलेशिया को 2-0 से मात दी। इस जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लिया। भारतीय टीम की रणनीति पर बात कर रहे हैं पूर्व हॉकी प्लेयर और महिला कोच MK कौशिक।
मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, उसको फॉलोअप की जरूरत थी और उसको ग्रो करने की जरूरत थी। उसमें हम लोगों ने सब जूनियर्स के बच्चे अलोंग विद सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर को रखा हुआ था। हम लोगों ने काफी सीनियर्स को निकाला नहीं था, चाहे वो इंजर्ड हो गए थे या उनका ट्रीटमेंट करते, रिहैब में रखा, तो उनके कंपटीशन में जैसे राजदीप प्राइम प्लेयर्स को भी रखा, तो मैं समझता हूँ कि वो एक प्लस पॉइंट था।
वहीं पूल बी में कोरिया बनाम कजाकिस्तान के मुकाबले में कोरिया ने 9-1 से जीत दर्ज करी। तो वहीं जापान और थाईलैंड के बीच हुए मुकाबले में जापान ने 7-1 से थाईलैंड को हराया। एशिया कप के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले 2 नवम्बर से शुरू होंगे। अब खबर क्रिकेट की दुनिया से। कल यानी 1 नवम्बर को खेला जाएगा भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला। ये मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेला जाएगा। 2-1 से ODI सीरीज पर कब्जा करने के बाद अब भारत की निगाहें T20 सीरीज पर होंगी। खेल की दुनिया से बस इतना ही, नमस्कार।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती के मौके पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पटेल को कम महत्व देने के प्रयास किए गए। एक भारतीय अदालत ने 10 साल की अपनी भांजी से बलात्कार करने के आरोप में दो मामाओं को दोषी पाया है। दोनों मामाओं को अगले महीने सजा सुनाई जाएगी। स्पेन की केंद्रीय सरकार द्वारा बर्खास्त किए गए कैटालोनिया के अलगाववादी नेता कार्लस पुज्जेमोंड ने कहा है कि उनकी बात यूरोपियन यूनियन सुनने के लिए ब्रसल्स आए हैं। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।